मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 25 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन 8 दोस्तों का नाम है खुशबू प्रजापति जौनपुर उत्तर प्रदेश से, प्रियांशी भारद्वाज आपका गांव है बारडोद जिला अलवर राजस्थान से, पंकज भाई पटेल आपका गांव है शुद्ध घासी सपहा जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, अंजलि कुमारी मुंगेर बिहार से, आशुतोष सिंह आपका गांव है हलियापुर जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद अफजल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, अभिषेक रंजन रांची झारखंड से और सूर्य प्रकाश मौर्य आपका गांव है मुगलाहा जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो खुशबू, प्रियांशी, पंकज, अंजलि, आशुतोष, मोहम्मद अफजल, अभिषेक और सूर्य प्रकाश आप 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे थोड़े अलग से ही विषय पर बात करने जा रहा हूं। जनरली इस तरह के विषयों को अभी तक, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मुख्य विषय में मैंने शामिल नहीं किया है, लेकिन एग्जामिनेशन की प्रवृत्ति को देखते हुए अब मैं थोड़े से मुख्य विषय में बदलाव लाने के बारे में सोच रहा हूं और उस बदलाव की झलक आज के विषय में आपको दिखाई देगी। और आज मैं आपसे बात करूंगा कोल्ड स्टोरेज के बारे में, जिसे आप शीत भंडारण कहते हैं। लेकिन आइए पहले हम दूसरी खबरों को देख लेते हैं। रेडियो न्यूज में आपने एक सिंपल सा स्टेटमेंट पढ़ा सुना होगा और वो ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत 2025 तक जो तपेदिक की बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी हम कहते हैं, उससे मुक्त हो जाएगा। वैसे भी 2030 तक दुनिया को इस बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, आज यह बीमारी कुछ छोटी सी बीमारी जैसी दिखाई देती है, बहुत ज्यादा पेशेंट थैंक्स गॉड कि आपको सुनने और देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एक समय में तपेदिक की बीमारी हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी थी, ट्यूबरकुलोसिस। अगर आप मेघे ढाका तारा फिल्म देखें, बांग्ला की फिल्म है, तो उसमें जो हीरोइन है वो इसी बीमारी से ग्रस्त रहती है और उस फिल्म को देखते देखते आप रोते रोते अपनी आंखें सुजा लेंगे। इतनी खूबसूरत फिल्म है मेघे ढाका तारा। उस समय की बहुत सी हमारी एक्ट्रेसेस रही हैं जो केवल इन्हीं बीमारियों की वजह से अपना जीवन खो बैठी। बहुत से आपको इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलेंगी, क्योंकि उस समय इसका कुछ खास इलाज नहीं हुआ करता था। पहाड़ों पर भेज दिया जाता था ताकि पेशेंट वहां स्वास्थ्य लाभ करके ठीक हो सके। लेकिन 2025 तक भारत में अभी भी ये बीमारी कुछ मात्रा में मौजूद है, कभी कभी आपको सुनने को मिल जाते होंगे। तो 2025 तक हमने इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। फ्रेंड्स, रेडियो और दूरदर्शन न्यूज में तो कोई खास बातें नहीं थी, लेकिन अखबारों में कुछ दूसरी चीजें हैं जिनकी चर्चा मैं पहले थोड़ी करना चाहूंगा। आपने खबरें सुनी भी होंगी कि हमारे देश के पहले लोकपाल की नियुक्ति हो गई है, जो पूर्व न्यायाधीश हमारे हैं PC घोष, पिनाक चंद्र घोष। वो हमारे देश के प्रथम लोकपाल के रूप में शपथ ले चुके हैं, राष्ट्रपति जी ने उन्हें शपथ दिलाई है। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि हालांकि इससे संबंधित विधेयक काफी पहले पारित हो चुका है 2013 में, लेकिन अभी तक सरकार ने नियुक्ति नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि नियुक्ति हो चुकी है तो आप ये मान करके चलिए कि एक संस्था तो अस्तित्व में आ गई है। बेसिकली लोकपाल जो की नियुक्ति है, अन्ना हजारे ने इन्हीं की नियुक्ति को लेकर के आंदोलन किया था। राज्यों में तो इसी के पैरल लोकायुक्तों की नियुक्ति होने लगी है, लेकिन केंद्र में अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी। आप ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के रूप में भारत में फिर एक बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण शक्तिशाली संस्था ने जन्म ले लिया है, जिसे आप लोकपाल कह सकते हैं। हालांकि देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सी एजेंसीज काम कर रही हैं, सीबीआई भी इसीलिए है, विजिलेंस कमीशन भी इसीलिए है, लोकायुक्त राज्यों में काम कर रहे हैं, सब उच्चतम न्यायालय अपने स्तर पर ये अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इन सब की अपनी सीमाएं हैं। सीबीआई तो सरकार के नियंत्रण में ही होता है, तो इसलिए सरकार के विरुद्ध कोई कदम उठा सकेगा इसके बारे में पब्लिक को हमेशा डाउट होता है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं, रूल्स रेगुलेशन के तहत ही वो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है, और नो डाउट कि उसने काफी कुछ दिया भी है। लेकिन अब लोकपाल जरूर एक ऐसी संस्था है जो इस मायने में बहुत बड़ा टर्निंग प्वाइंट सिद्ध हो सकता है। अब लोकपाल को अपने आप को यह साबित करना होगा कि वास्तव में यह अपने आप में कितनी शक्तिशाली संस्था है। मित्रों, दूसरी खबर के रूप में जो नीरव मोदी हैं, आप भी बीच में न्यूज में सुन रहे होंगे कि किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है इंग्लैंड में, और वो उन्हें जेल भेज दिया गया है। भारत में उनके लौट करके आने की संभावना अब थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। इस बीच में आप देखिए कि ये तो मानना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में जो आर्थिक अपराधी हैं उनके ऊपर सरकार ने शिकंजा कसने की बहुत कोशिश की है। रियल एस्टेट में जितने मामले गड़बड़ी के होते थे, देख रहे हैं हम कि उन पर प्रतिबंध के लिए बकायदे कानून लाया गया है। फिर प्रत्यर्पण संधियां कुछ देशों के साथ की गई हैं कि वहां जो आर्थिक भगोड़े होते हैं उन्हें हम वापस ला सकें। आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून जो पारित किया गया है, आज उसी के परिणाम स्वरूप है कि जो लोग इस तरह से भाग जाते हैं, जैसे नीरव मोदी और चौकसी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोग भाग गए हैं, कि भारत में उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और यहां तक कि विदेशों में भी उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। और अब बीच में आप सुन रहे हैं कि किस तरह से इनकी संपत्तियां नीलाम हो रही हैं, तो इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली इस तरह के आर्थिक अपराध करने वाले लोगों पर पड़ेगा। अभी तक उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, वो कानून को मैनिपुलेट कर लेंगे और उसके सरकारी शिकंजे से बच जाएंगे, लेकिन अब कहीं न कहीं उन्हें अपने इस सोच पर डाउट होने लग रहा होगा कि नहीं, अब बच पाना उतना संभव नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक लेख दे रहा हूं जो न्यायालयों के ऊपर कि क्या कारण है कि जो न्यायालय की व्यवस्था है उनमें सुधार नहीं आ पा रहा है, लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में न्यायिक सुधार जैसा कोई बिंदु नहीं होता है। इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा आंकड़ा दिया है कि न्यायपालिका के लिए सोचिए कि हमारा बजट का केवल 0.2% आवंटित होता है, 0.2%, जो कुछ भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इस लेख को जरूर पढ़ें और इसमें कुछ अच्छी बातें आपको नोट करने लायक मिल जाएंगी। दोस्तों, एक मैं आपको आर्टिकल और प्रोवाइड कर रहा हूं डॉक्टर दिलीप चौबे का, जो इंटरनेशनल रिलेशन पर बहुत अच्छा लिखते हैं। इसमें एक पॉइंट उन्होंने बहुत खूबसूरत उठाया है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तो अब आप देख रहे हैं कि कितनी कड़वाहट आ गई है। उन्होंने संभावना के रूप में एक बात कही है कि जून में शंघाई सहयोग संगठन SCO इसकी बैठक होने वाली है। चीन भी इसका सदस्य है, रूस भी इसका सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य है, पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। तो पाकिस्तान के तो इमरान खान उस बैठक में आएंगे ही, भारत में उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि इस बीच में चुनाव हो चुके होंगे, जून में बैठक होनी है, तो हमारे प्रधानमंत्री भी उस बैठक में मोस्ट प्रोबेबली जाने की संभावना हम मान सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि उस बैठक में चूंकि चीन रशिया जैसे देश भी होंगे, तो एक संभावना है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं, जो अभी पटरी पर उतर गए हैं, फिर से वापस आ सके। और मैं चाहूंगा कि इस लेख को भी आप लोग जरूर पढ़ें। दोस्तों, ये थी कुछ छोटी छोटी खबरें। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। जैसा कि मैंने कहा कि मुख्य विषय के जो शेड्स हैं, अब मैं थोड़े से चेंज करने जा रहा हूं। उसी के तहत आज मैं आपसे कोल्ड स्टोरेज के बारे में बात कर रहा हूं। ये आपके सिलेबस में बाकायदे है। अगर आप अपने मेंस के थर्ड पेपर का सिलेबस देखेंगे जीएस का, तो उसमें बकायदे सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी दिया हुआ है, और कोल्ड स्टोरेज और आपके ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होते हैं पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की दृष्टि से, वो आपके सिलेबस में बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। और केवल स्पष्ट रूप से सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बल्कि जब आप अपने अनसॉल्व्ड पेपर पलटेंगे तो उसमें इस तरह के प्रश्न भी बकायदे पूछे जाते हैं। देखिए, भारत में अभी एक जो सबसे मौजूद प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल बर्निंग क्वेश्चन है, वो ये है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, हम दुगुना किया जाए उस फॉर्मूले में नहीं जा रहे हैं कि कैसे बढ़ाई जाए। आप लगातार देख रहे हैं कि किसानों की आत्महत्याओं की खबरें तो चल ही रही हैं, साथ ही साथ किसान अब आंदोलन पर भी उतर आए हैं, और जिसका प्रभाव है, आप कह लीजिए कि अंतरिम बजट में सरकार ने इस तरीके से उन्हें 6000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा भी की। ये न केवल किसानों के सामने उपस्थित संकट का ही प्रमाण है बल्कि उनके दबाव का भी प्रमाण है, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सारे उपाय हैं बहुत ही टेम्परेरी हैं, कि आप स्टेट चुनाव में आप कह लीजिए कि हम आपका कर्ज माफ कर देंगे, जैसा कि मध्य प्रदेश राजस्थान में हुआ, लेकिन इससे हल नहीं होना है। तो हल क्या है? तो हल के तहत ही ये बात कही जाती है कि हमको किसानों से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इंडस्ट्री है उनको बढ़ाना होगा। जैसे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो बकायदे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप देखिए कि सिलेबस में अलग से मेंशन भी है, किसान जो कुछ भी पैदा कर रहा है, जो कुछ भी, चाहे वो चावल गेहूं जैसी चीजें हों या आलू और टमाटर जैसी सब्जियां हों, वेजिटेबल्स हों, बागवानी की चीजें हों, अनफॉर्चुनेट पार्ट दो हो रहे हैं। पहला तो यह है कि चूंकि उनका उत्पादन काफी हो रहा है, डिमांड से ज्यादा वो चीजें उत्पादित कर रहे हैं, तो उनको अपने उत्पादन की सही कीमत नहीं मिल रही है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलने की गुंजाइश होती है वो या तो आपके विपणन के मार्केटिंग के कानून कुछ ऐसे बन गए हैं कि बेचारों के हाथ कुछ नहीं आता, या फिर मेडिएटर जो दलाल होते हैं, मध्यस्थ लोग हैं, उनके पल्ले सब कुछ चला जाता है, किसान उससे महरूम, किसान उससे वंचित रह जाता है, उन्हें अपनी कीमत ठीक से नहीं मिल रही है। दूसरी चीजें यह है कि वो जो चीज पैदा कर रहे हैं उनमें वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा देते हैं तो बट नेचुरल है कि वो जो पैदा कर रहा है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। आलू पैदा कर रहा है एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आलू के चिप्स बना रही है तो उनको आलू की कीमत मिल जाएगी। तो किसानों को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से कीमत अच्छी मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि भंडारण की बहुत अच्छी सुविधा हो। हमारे यहां स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज तो छोड़ दीजिए, वैसे ही भंडारण वेयर हाउस जिसको आप कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसके लिए जिम्मेदार है बनाने के लिए, उसकी बेहद कमी है। कोल्ड स्टोरेज की तो बहुत ही ज्यादा कमी है। आप सोचिए कि कितना बड़ा हिंदुस्तान है, और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि कुल भारत में अभी एग्जैक्ट जो आंकड़ा है मेरे सामने वो है 7645 कोल्ड स्टोरेज ओनली। सोच करके देखिए, केवल इतने हैं, और इसमें भी जितने हमारी कोल्ड स्टोरेज हैं इसमें से लगभग 65% कोल्ड स्टोरेज की जो क्षमता है वो केवल आलू खा जाती है, उसमें केवल आलू रखा जाता है, और रिमेनिंग जो 35% बच रहा है, सोचिए कि उसमें सारी चीजें रखी जा रही हैं, इतनी सारी चीजें हमारे यहां प्रोड्यूस हो रही हैं, और उनमें कोल्ड उनके लिए भंडारण क्षमता हमारे पास इतनी है। और इस भंडारण क्षमता में भी 7645 में भी आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इसमें से ज्यादातर जो भंडार हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में, 2000 तो अकेले उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद थोड़े से पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, और महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, बाकी राज्यों में कोल्ड स्टोरेज आपको दिखाई ही नहीं देंगे, बहुत थोड़े थोड़े कहीं कहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में किसान कैसे अपनी चीजों को स्टोर कर सके, इसीलिए वो जो पेरिशेबल चीजें होती हैं, जो शीघ्र नष्ट हो जाने वाली चीजें होती हैं, उसकी मजबूरी होती है कि जिस भाव में भी बिक रहा हो उसे वो बेच दे। इसीलिए जब टमाटर होते हैं, आलू होते हैं, तो आपको खबरें सुनने को मिलती हैं कि किस तरह से किसाने अपने आलू और अपने टमाटर मंडियों पे और सड़कों पर बिखेर करके अपने घर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, जो कोल्ड स्टोरेज है, वेयरहाउस जहां कोई भी चीज रखी जा सकती, कोल्ड स्टोरेज, शीत गृह, ये दो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चरल इनकम को विकसित करने के लिए। और अभी जो हमारे कोल्ड स्टोरेज है, आप सोच करके देखिए, उसका जो टोटल, उसकी जो कैपेसिटी है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, टोटल कैपेसिटी लगभग 4 करोड़ टन की है। सोचिए 4 करोड़ टन हम केवल रख सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि खबर आई है कि 2023 तक इसे बहुत ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें लगभग 21,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। और अभी हमारे जो कोल्ड स्टोरेज का सिनेरियो है दोस्तों, उसमें 95% कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट सेक्टर में है, केवल 3% सहकारी समितियों के पास है, कोऑपरेटिव कमेटीज के पास है, और केवल 2% पब्लिक सेक्टर में है। सोच करके देखिए कि सरकार ने कितना कम निवेश कोल्ड स्टोरेज के क्षेत्र में किया हुआ है, जबकि कृषि का यह बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज के बारे में इस तरह से मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सब आप अपने ढंग से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: प्रवीण कुमार, अलीशा बानो कैमोर मध्य प्रदेश से, राकेश कुमार राजभर, कौशिक दास पश्चिम बंगाल से, और डॉक्टर संजय कुमार झांसी उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।